शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 18। दाविद ने अपने साथियों की गिनती की और इसमें उन्होंने हजारों और सैकड़ों के ऊपर प्रधान बना दिए। तब उन्होंने सेना को तीन भागों में बांटकर एक तिहाई भाग योआब के नेतृत्व में, दूसरी तिहाई भाग जेरुया के पुत्र और योआब के भाई अभिशाई के नेतृत्व में और तीसरी तिहाई भाग गाथी इत्तई के नेतृत्व में भेज दिया। राजा ने सेना के सामने यह घोषित किया, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। मगर सैनिकों ने विरोध किया, नहीं, आपका हमारे साथ जाना सही नहीं है। यदि हमें भागना ही पड़ जाए तो उन्हें तो हमारी कोई परवाह नहीं है। यदि हम आधे मार दिए जाए तो भी अब शालोम के सैनिक परवाह नहीं करेंगे, मगर आपका महत्व हम जैसे 10,000 के बराबर है। तब इस स्थिति में ठीक यही है कि आप नगर में रहते हुए ही हमारा समर्थन करें। यह सुन राजा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं वही करूंगा जो तुम्हारी दृष्टि में सही है। तब राजा नगर फाटक के पास खड़े हो गए और सारी सेना 100-100 और 1,000 के समान समूहों में उनके पास से निकलते चले गए। राजा ने योआब, अबीशाई और इत्तई को आदेश दिया, मेरे हित का ध्यान रखते हुए इस युवा अबशालोम के साथ दया दिखाना। राजा द्वारा अबशालोम के विषय में सारे प्रधानों को दिए गए इस आदेश को सारी सेना ने भी सुना। तब यह सेना इज़राइल से युद्ध करने मैदान में जा पहुंची और यह युद्ध एफ्राइम के वन में छिड़ गया। दाविद के सैनिकों ने इज़राइल की सेना को हरा दिया। उस दिन की मार बहुत ही भयानक थी, जिसमें 20,000 सैनिक मारे गए। यह युद्ध पूरे देश में फैल गया था। तलवार की अपेक्षा वन के घनत्व ने ही अधिकतर सैनिकों के प्राण ले लिए। संयोगवश अबशालोम की भेंट दाविद के सैनिकों से हो गई। उस समय अबशालोम अपने खच्चर पर चढ़ा हुआ था। खच्चर एक विशालकाय बांज वृक्ष के नीचे से भागने लगा। परिणाम स्वरूप अबशालोम का सिर बांज वृक्ष की डालियों में मजबूती से जा फंसा। उसका खच्चर तो आगे बढ़ गया, मगर वह स्वयं भूमि और आकाश के बीच लटका रह गया। किसी ने अबशालोम को इस स्थिति में देख लिया और जाकर योआब को इसकी सूचना दे दी, सुनिए, मैंने अबशालोम को बांज वृक्ष से लटके हुए देखा है। योआब ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तुमने उसे सचमुच देखा है, तब तुमने उसे मारकर भूमि पर क्यों ना गिरा दिया? इसके लिए मैं तुम्हें खुशी से 10 चांदी के सिक्के और योद्धा का एक कमरबंद भी दे देता। मगर उस व्यक्ति ने योआब को उत्तर दिया, यदि मेरे हाथ पर 1,000 चांदी के सिक्के भी रख दिए जाते, मेरा हाथ राजकुमार पर नहीं उठ सकता था, क्योंकि स्वयं हमने राजा को, आपको, अभिशाई को और इत्तई को यह आदेश देते हुए सुन रखा है, मेरे हित का ध्यान रखते हुए उस युवा अबशालोम को सुरक्षित रखना। इसके अलावा यदि मैंने उसके प्राण लेकर राजा के प्रति विश्वासघात किया भी होता तो आप तो मुझसे स्वयं को पूरी तरह अलग ही कर लेते, जबकि राजा से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। इस पर योआब ने कहा, व्यर्थ है तुम्हारे साथ समय नष्ट करना। उन्होंने तीन भाले लिए और बांज वृक्ष में लटके हुए जीवित अबशालोम के हृदय में भोंक दिए। उसके बाद 10 सैनिकों ने, जो योआब के हथियार उठाने वाले थे, अबशालोम को घेरकर उस पर वार कर उसे घात कर दिया। यह होने के बाद योआब ने युद्ध समाप्ति की, तुरी फूंकी और सैनिक इज़राइल का पीछा करना छोड़ लौट आए। युद्ध समापन योआब का आदेश था। उन्होंने अबशालोम के शव को वन में एक गहरे गड्ढे में डालकर उसके ऊपर पत्थरों का बहुत विशाल ढेर लगा दिया। सभी इज़राइली सैनिक भाग गए, हर एक अपने अपने तंबू में। जब अबशालोम जीवित ही था, उसने राजा की घाटी नामक स्थान पर अपने लिए एक स्मारक खंभा बनवा दिया था। उसका विचार था, मेरे नाम की याद स्थायी रखने के लिए, क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। इस स्मारक स्तंभ को उसने अपना ही नाम दिया। आज तक यह अबशालोम स्मारक के नाम से जाना जाता है। अबशालोम की मृत्यु और दाविद। यह सब होने पर सादोक के पुत्र अहिमाज ने विचार किया, मैं दौड़कर राजा को यह संदेश दूंगा कि यहावे ने उन्हें उनके शत्रुओं के सामर्थ्य से छुड़ाया है। मगर योआब ने उससे कहा, आज तुम कोई भी संदेश नहीं ले जाओगे, तुम किसी दूसरे दिन संदेश ले जाना, लेकिन तुम्हें आज ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह राजकुमार की मृत्यु का समाचार है। वहां कूश देश का एक निवासी था। योआब ने आदेश दिया, तुमने जो कुछ देखा है उसकी सूचना जाकर राजा को दे दो। कूश देशवासियों ने झुककर योआब का अभिवादन किया और दौड़ पड़ा। सादोक के पुत्र अहिमाज ने योआब से दोबारा विनती की, कुछ भी हो मुझे भी उस कूश देश निवासी के पीछे जाने दीजिए। योआब ने उससे पूछा, मेरे पुत्र तुम क्यों जाना चाह रहे हो? इस समाचार को प्रेषित करने का तुम्हें कोई पुरस्कार तो मिलेगा नहीं। कुछ भी हो, उसने उत्तर दिया, मैं तो जाऊंगा। तब योआब ने उसे उत्तर दिया, जाओ। तब अहिमास दौड़ पड़ा और मैदान में से दौड़ता हुआ उस कूश देश निवासी से आगे निकल गया। दाविद दो द्वारों के मध्य बैठे हुए थे, प्रहारी दीवार से चढ़कर द्वार पर बने छत पर पहुंच गया। जब उसने दृष्टि की तो उसे एक अकेला व्यक्ति दौड़ता हुआ नजर आया। प्रहारी ने पुकारते हुए राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने उससे कहा, यदि वह अकेला व्यक्ति है तो उसके मुख से आनंददायक संदेश ही सुना जाएगा। वह व्यक्ति निकट निकट आता गया। तब प्रहारी ने एक और व्यक्ति को दौड़ते हुए आते देखा। प्रहारी ने पुकारते हुए द्वारपाल को सूचित किया, देखो देखो, एक और व्यक्ति अकेला दौड़ा आ रहा है। राजा कहने लगा, वह भी आनंददायक संदेश ही ला रहा है। प्रहारी ने उन्हें बताया, मेरे विचार से प्रथम व्यक्ति के दौड़ने के ढंग से ऐसा लग रहा है कि वह सादोक का पुत्र अहिमाज है। यह सुन राजा ने कहा, वह एक अच्छा व्यक्ति है, वह अवश्य ही शुभ संदेश ला रहा है। अहिमाज ने पुकार कर राजा से कहा, सब कुछ कुशल है। तब वह राजा के समक्ष भूमि पर दंडवत हो गया। उसने आगे कहा, स्तुत्य है यहावे, आपके परमेश्वर, जिन्होंने महाराज मेरे स्वामी के शत्रुओं को पराजित कर दिया है। राजा ने उससे पूछा, क्या युवा अब शालोम सकुशल है? अहिमाज ने उत्तर दिया, जब योआब ने आपके सेवक को महाराज के लिए संदेश के साथ प्रेषित किया था, तब मैंने वहां बड़ी अव्यवस्था देखी, मगर मुझे यह ज्ञात नहीं कि वह सब क्या था। तब राजा ने उसे आदेश दिया, आकर यहां खड़े रहो। तब वह जाकर वहां खड़ा हो गया। तब वह कूश देशवासी भी वहां आ पहुंचा। उसने सूचना दी, महाराज मेरे स्वामी के लिए खुशखबरी है, आज यहावे ने आपको विद्रोहियों पर जयंत किया है। यह सुनने के बाद राजा ने कूश देशवासियों से प्रश्न किया, युवा अब शालोम तो सकुशल है ना? कूशवासी ने उत्तर दिया, महाराज मेरे स्वामी के शत्रुओं की और उन सभी की नियति जो आपके हानि के कटिबंध हो जाते हैं वही हो जो उस युवा की हुई है। भावना से अभिभूत राजा नगर द्वार के ऊपर बने हुए कक्ष में जाकर शोक करने लगे। जब वह वहां जा रहे थे, उनके द्वारा उच्चारे गए ये शब्द सुने गए, मेरे पुत्र अबशालोम, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र अबशालोम, उत्तम तो यह होता तुम्हारे स्थान पर मेरी ही मृत्यु हो जाती, अबशालोम मेरे पुत्र, मेरे पुत्र।